अध्याय दो पूर्वेतिहासिक काल पाषाण काल। मानव सभ्यता का बीजारोपण सर्वप्रथम पाषाण काल की कठोर स्थली में ही हुआ था। इस काल का इतिहास मानव की कठोर साधना का प्रतिफल है। अपने दीर्घकालीन अध्यवसाय अन्वेषण उत्खनन और कल्पना के सहारे विश्व के कर्मठ पुरातत्ववेताओं एवं ज्ञानार्थियों ने एक एक कण एकत्र कर अपने पूर्वजों के प्राचीनतम इतिहास की जो रूपरेखा निर्मित की है वह उत्तरोत्तर मुखर और स्पष्ट होती जा रही है। इस काल की समस्त सामग्री प्रमुखतया पाषाण निर्मित है। इसी तथ्य को सूचित करने के लिए निमित्त इस काल को पाषाण काल की संज्ञा दी गई है। पाषाण कालीन मनुष्य के क्रमिक विकास को परिलक्षित करने के लिए 1863 ईस्वी में ल्यूबक महोदय ने पाषाण काल को दो भागों में विभाजित किया था, पहला पूर्व पाषाण काल और दूसरा उत्तर पाषाण काल। यूनानी भाषा में प्लायस और नियो क्रमशः प्राचीन और नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और लीटोस पाषाण के अर्थ में। इन्हीं शब्दों के आधार पर पाषाण काल के दोनों विभागों का नामकरण हुआ था। बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक प्रगति एवं जीवनोपयोगी अनुसंधानों के दृष्टिकोण से उत्तर पाषाण काल पूर्व पाषाण काल की अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत था। प्रारंभ में विद्वानों का मत था कि दोनों काल एक दूसरे में से नितांत पृथक हैं, उनके बीच में कोई भी कड़ी नहीं है, वे एक दूसरे से असंबद्ध हैं। परंतु कालांतर में विद्वानों के अन्वेषणों ने इस धारणा को असत्य सिद्ध कर दिया है। उन्होंने दोनों के बीच मध्य पाषाण काल का पता लगाया है। यह शब्द भी यूनानी मध्य से निर्मित हुआ है। विद्वानों का मत है कि मध्य पाषाण काल पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बीच में एक कड़ी है जो पाषाण कालीन सभ्यता के क्रमिक सुसंबद्ध और अविच्छिन्न विकास की सूचना देती है। इस मध्य पाषाण काल को वास्तव में संक्रांति काल समझना चाहिए। इसमें न तो पूर्व विशेषताओं का पूर्णतः परित्याग दिखाई देता है और न ही नवीन विशेषताओं का पूर्णतः ग्रहण ही। पूर्व पाषाण काल भारतवर्ष में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इसी वर्ष भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे के विद्वान ब्रूस फूट ने मद्रास के समीप पल्लावरण नामक स्थान पर पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण निर्मित औजार उपलब्ध किया। इसके पश्चात किंग ओल्डहम हैकेट वीन और ब्लेनफर्ड आदि विद्वानों ने भी बहुसंख्यक पूर्व पाषाण कालीन सामग्रियां प्राप्त की। 19वीं शताब्दी के समाप्त होते होते मद्रास बम्बई मध्य प्रदेश उड़ीसा बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रांतों तथा मैसूर हैदराबाद डेन कॉनल तलचेर और रियासतों में अनेक पूर्व पाषाण कालीन स्थल हैं। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत में भी अनुसंधान हुए। सबसे अधिक उल्लेखनीय अनुसंधान था येल एक्सपेडिशन का जो कि डी टेरा चार्डिन और पेटरसन नामक विद्वानों के निरीक्षण में सन 1932 में हुआ था। इस समस्त अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप बहुसंख्या में विविध पूर्व पाषाण कालीन सामग्री उपलब्ध हुई। प्राप्त स्थानों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन मनुष्य या तो नदियों के कगारों और झीलों के तटों पर रहता था या पर्वत कंदारों में। जियोलॉजी और पुरातत्व के विद्वानों के मतानुसार भारतवर्ष में पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता का उदय एवं विकास प्लाइस्टोसीन काल में लगभग 500,000 वर्ष पूर्व हुआ था। प्लाइस्टोसीन काल सहस्त्रों वर्षों तक रहा था। इस काल में उत्तरी और दक्षिणी भारतवर्ष में महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तित होते रहे। उत्तरी भारतवर्ष में यह काल निम्न प्रकार से विभक्त किया जा सकता है, पहला प्रथम ग्लेशियल काल अथवा हिम काल, दूसरा प्रथम इंटर ग्लेशियल काल, तीसरा द्वितीय ग्लेशियल काल अथवा हिम काल, चौथा द्वितीय इंटर ग्लेशियल काल, पांचवा तृतीय ग्लेशियल काल अथवा हिम काल, छठवां तृतीय इंटर ग्लेशियल काल, सातवां चतुर्थ ग्लेशियल काल अथवा हिम काल। ग्लेशियल काल अर्थात हिम काल अत्यधिक शीत प्रधान परंतु इंटर ग्लेशियल काल अपेक्षा के कुछ उष्ण थे। इसी प्रकार का जलवायु क्रम दक्षिणी भारत में भी था। प्रसिद्ध विद्वान बर्किट के मतानुसार जहां उत्तरी भारतवर्ष में ग्लेशियल काल और इंटर ग्लेशियल काल का क्रम चल रहा था, वहां दक्षिणी भारतवर्ष में प्लूवियल काल और इंटर प्लूवियल काल का। प्लूवियल काल अत्यधिक आर्द्र परंतु इंटर प्लूवियल काल अपेक्षाकृत कुछ शुष्क थे। अस्तु इसी प्रकार की जियोलॉजी की पृष्ठभूमि पर भी भारत में पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ। स्टुअर्ट पिगट नामक विद्वान ने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बहुसंख्यक पाषाण उपकरणों की परीक्षा करके यह निष्कर्ष निकाला था कि टेक्निक के आधार पर उनमें स्थूलतया विभेद स्थापित किया जा सकता है। उत्तरी भारतवर्ष में प्रमुखतया प्लेग प्रणाली का प्रयोग हुआ था, जिसके अंतर्गत पाषाण खंड से छोटे छोटे चप्पे छील लिए जाते थे। उन्हीं चप्पों की सहायता से हथियार और औजार निर्मित किए जाते थे। इसके विरुद्ध दक्षिणी भारतवर्ष में प्रमुखतया कोर प्रणाली प्रचलित थी। इसके अंतर्गत किसी पाषाण खंड को ही छिलकर अभिष्ट हथियार अथवा औजार की आकृति दे दी जाती थी। इसमें मूल पाषाण खंड से निकले हुए चप्पों से नहीं वरन स्वयं मूल पाषाण खंड से ही उपकरण निर्मित होते थे। पीगट महोदय का मत है कि भारतवर्ष के पाषाण काल और विश्व के अनेक खंडों के पाषाण कालों में संबंध और साम्य स्थापित किया जा सकता है। उत्तरी भारतवर्ष की भांति मध्य यूरोप में भी ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल कालों का क्रम चल रहा था। यही क्रम कदाचित उत्तरी ब्रह्मा और उत्तरी चीन में भी चल रहा था। इसी प्रकार दक्षिणी भारतवर्ष के समान पूर्वी एशिया और अफ्रीका में प्लूवियल और इंटरप्लूवियल का क्रम चल रहा होगा। ऐसी समान परिस्थिति में समान सभ्यता का उद्भव होना संभव था। यही कारण है कि भारतवर्ष के समान पूर्वी एशिया, मध्य एवं पश्चिमी यूरोप तथा अफ्रीका के अनेक स्थानों में भी प्लेग और कोर प्रणाली पर निर्मित अनेक पाषाण उपकरण मिले हैं। अभाग्यवश भारतवर्ष में पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य का कोई भी अस्थि पंजर अथवा उसका भाग उपलब्ध नहीं हो सका है, परंतु विश्व के अनेक प्रदेशों में उपलब्ध मानव अस्थि पंजरों के आधार पर पीगट महोदय ने पाषाण कालीन मानव के विषय में अपना मत प्रकाशित किया है। वे प्रारंभिक मानव को मूल को बताते हैं। इनके कपाल और जबड़े बहुत कुछ बंदरों के समान थे। जावा और चाउकोंटीन में प्राप्त प्राचीनतम मानव अस्थि पंजर इसी कोटि में रखे जा सकते हैं। भारतवर्ष की प्लेग प्रणाली कदाचित इसी वर्ग में प्रारंभ की थी। पाषाणकालीन मनुष्यों से दूसरे वर्ग में न्योन्थोरिप की संज्ञा दी गई है। इसका अस्थि पंजर बहुत कुछ आधुनिक मानव के सदृश था। यूरोप तथा भारतवर्ष में कोर प्रणाली का उद्भव इसी वर्ग ने किया था। अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारतवर्ष में प्राचीनतम मानव का उदय सर्वप्रथम पंजाब की सिंधु और झेलम सरिताओं के बीच के प्रदेश में हुआ था। शिवालिक पहाड़ियों के अधो भाग उत्तरी पश्चिम पंजाब, पुंछ और जम्मू में प्राप्त सामग्री पर यह मत आधारित है। पंजाब में मानव का यह उद्भव प्रथम इंटरग्लेशियल काल के अंत में लगभग 500,000 वर्ष पूर्व बताया जाता है, परंतु बर्किट प्रभृति कुछ विद्वानों की धारणा है कि आदि मानव का उदय दक्षिणी भारत में हुआ था। वहीं से प्रथम ग्लेशियल काल अर्थात हिम काल के पश्चात वह पंजाब की ओर गया था। इस प्राकथन के पश्चात अब हमने विभिन्न प्रदेशों में हुए अन्वेषणों एवं उनके निष्कर्षों के ऊपर अधिक विस्तार के साथ विचार करेंगे। संपूर्ण 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में अनुसंधानकर्ताओं की कार्यप्रणाली अधिक विकसित और वैज्ञानिक न थी। वे एकमात्र हथियारों और औजारों की रूपरेखा के आधार पर ही कोटि विभाजन करते थे, परंतु कालांतर में जियोलॉजी के प्रयोग ने उनके कार्य को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान की। सर्वप्रथम बर्किट ने मद्रास प्रांत में कृष्णा सरिता की घाटी में उपलब्ध पाषाण सामग्री का विश्लेषण जियोलॉजी और टाइपोलॉजी दोनों के आधार पर किया। सर्वप्रथम उसी ने प्लूवियल और इंटरप्लूवियल क्रम की 7 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया, जो कि डी टेरा सामग्री को 4 कोटियों में विभाजित कर बर्किट महोदय ने पूर्व पाषाण काल की 4 सभ्यताओं का पता लगाया है। पहला द्विधारा उपकरण। कालक्रम के अनुसार ये उपकरण सबसे अधिक प्राचीन है। इनमें हार्ड एक्स और क्लीवर आते हैं, जिनमें दोनों ओर धार है। इस प्रकार के उपकरण अफ्रीका में भी उपलब्ध हुए हैं। प्रसिद्ध विद्वान पैटरसन अनुसार उत्तरी भारतवर्ष के सोहन प्लेग उपकरणों और दक्षिणी भारतवर्ष के इन द्विधारो उपकरणों में भी अत्यधिक समता है। दूसरा प्लेग उपकरण। इनमें विभिन्न पाषाणों क्वेटीजी हैंडस्टोन एंड चेल्स डोनी द्वारा निर्मित सुंदर हैंड एक्स आते हैं। तीसरा ब्लेड और ब्यूरिन उपकरण। ये उपकरण प्रायः पतले हैं। चौथा माइक्रोलिथिक उपकरण। इनमें स्कार्पर्स कैरेटेसेंट एंड ट्रेन ग्लेस और कोरेस आदि सम्मिलित हैं। ये प्रायः अगेटे और क्वेटेजी द्वारा निर्मित हैं। इस वर्ग के हथियारों और औजारों की संख्या सबसे अधिक है। दक्षिणी अफ्रीका में भी इस प्रकार की सामग्री मिली है। उस सामग्री को वहाँ विल्टन सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। बर्किट महोदय ने मद्रास के उत्तर में कुरनूल में उपलब्ध लैटरीट को सबसे अधिक प्राचीन बताया। उनका मत है कि यह पाषाण आदि मानव के उदय काल से भी अधिक प्राचीन है। दक्षिण भारतवर्ष के कोरतलयार घाटी में भी पूर्व पाषाण कालीन सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बदमुदुराय नामक स्थान पर बहुसंख्यक पूर्व पाषाण कालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। उपकरण में यहाँ की पृथ्वी की तीन सतहें स्पष्टता दृष्टिगत होती हैं। पहला, सबसे नीचे की सतह बोल्डर पाषाणों से निर्मित है। बोल्डर वे पाषाण खंड हैं जिनमें जल धाराएं किसी विशाल पर्वत अथवा शिला से तोड़कर बहा लाती हैं। ऐसी ही पाषाण खंडों के समूह को अंग्रेजी में बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। इस सतह में अनेक हथियार और औजार प्राप्त हुए हैं। ये कालक्रम और रूपरेखा के आधार पर दो भागों में विभक्त किए गए हैं। पहला, पूर्वकालीन। इस कोटि के अंतर्गत भारी और लंबे हैंड एक्स और कोरे आते हैं। इन पर निम्न कोटि की फ्लेकिंग के चिन्ह हैं। हैंड एक्स अबेविलियन कोटि की है। कालातिपात के कारण संपूर्ण सामग्री सफेद रंग की कोई काई से ढकी हुई थी। दूसरा, उत्तरकालीन। इस कोटि के अंतर्गत भी हैंड एक्स और कोर आते हैं, परंतु ये कला की दृष्टि से अधिक सुंदर हैं। फ्लैकिंग सुस्थित हैं। इन पर टेप फ्लैकिंग का भी प्रादुर्भाव दृष्टिगत होता है। हैंडेक्स अचुलियन कोटि की है। दूसरा, बीच की सतह लाल रंग के पाषाणों द्वारा निर्मित है। इसमें भी अनेक हथियार और औजार प्राप्त हुए हैं। कला की दृष्टि से ये प्रथम कोटि के हथियारों और औजारों की अपेक्षा अधिक सुंदर हैं। इनकी ट्रैकिंग भी अधिक सुव्यवस्थित है। हैंडेक्स पहले की अपेक्षा अधिक चौड़ी और सुडोल है। ये मध्य अचिलियन कोटि की है और लाल रंग के पाषाण के संपर्क से लाल हो गई है। इन पर टेप फ्लैकिंग भी अधिक है। तीसरा, सबसे ऊपर की सतह कंगारों की है। इसमें उपलब्ध सामग्री में न पाषाणों का लाल रंग है और न अधिक काई। हैंडेक्स उत्तर अचिलियन कोटि की है। इनमें लकड़ी की टेक्निक का प्रयोग किया गया है। इस सतह में कुछ क्लेवर और कोर भी मिले हैं। इन पर पतली फ्लैकिंग है। कोरतलयार घाटी में दूसरा पूर्व पाषाण कालीन महत्व का स्थान अतिरम्पकम है। यहाँ भी बहुसंख्या में पूर्व पाषाण कालीन सामग्री उपलब्ध हुई है। अधिकांश सामग्री बदमुदुराय की सबसे ऊपरी सतह पर उपलब्ध सामग्री की समकालीन है। हैंडेक्स उत्तर अचिलियन कोटि की है और उस कोटि के यूरोप तथा अफ्रीकी की हैंडेक्स के समान कुछ हैंडेक्स विशेषतया पतली चौड़ी लंबी और फ्लैक द्वारा निर्मित हैं। हैंडेक्स के साथ साथ क्लीवर भी बहुत संख्या में मिले हैं। ये विविध रूप के हैं और अफ्रीका के बाल प्रणाली पर निर्मित क्लीवर से मिलते जुलते हैं। कुछ कोर और फ्लैक पर उत्तरी भारतवर्ष की सोहन प्रणाली दृष्टिगत होती है। मद्रास में उपलब्ध कुल्हाड़ी प्रधान यह समस्त सामग्री एक विशिष्ट परंपरा के अंतर्गत निर्मित हुई थी। इस सामग्री में आश्चर्यजनक एक रूपता है। श्री बी डी कृष्णाव स्वामी ने इस निर्माण प्रणाली को मद्रास इंडस्ट्री की संज्ञा दी है। इसका उद्भव पूर्व पाषाण कालीन के प्रथम चरण में हुआ था। दक्षिणी भारत की भांति उत्तर पश्चिमी भारत में भी महत्वपूर्ण अनुसंधान हुए। पाषाणकालीन अनुसंधान के लिए पश्चिमी पंजाब की सोहन नदी की घाटी का महत्व बहुत पहले ज्ञात हो चुका। 1880 में ही यहाँ पर कुछ पाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हो चुकी थी। 1930 में ताड नामक विद्वान ने इसी घाटी में पिंडी घेब में अनेक पूर्व पाषाणकालीन उपकरण एकत्र किए, परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन ने किया। इसके अनुसंधान का क्षेत्र काश्मीर घाटी से लेकर शॉर्ट रेंज तक था। इसमें काश्मीर की घाटी, हिमालय पर्वत का एक डाल, पंजाब का पोटवर क्षेत्र, पीर पंजल और शॉर्ट रेंज की श्रेणियां सम्मिलित थी। डी टेरा अधिक महत्वपूर्ण कार्य था। इस संपूर्ण क्षेत्र में ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल के क्रम के आधार पर पाषाणकालीन सभ्यता का विश्लेषण, हम इसी क्रम के आधार पर ही इसके अनुसंधानों का अध्ययन करेंगे। पहला, प्रथम इंटर ग्लेशियल काल प्री सोहन इंडस्ट्री। प्रथम इंटर ग्लेशियल काल के पश्चात द्वितीय ग्लेशियल काल अर्थात हिम काल आता है। इसी की एक प्राथमिक अवस्था को विद्वान बोल्डर कॉग्लोमरेट का काल कहते हैं। डीटरा ने इसी बोल्डर कॉग्लोमरेट में ही मानव की सर्वप्रथम पाषाण सामग्री उपलब्ध की है, परंतु यह अनुमान किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में मानव का उदय पुरोगामी काल अर्थात प्रथम इंटर ग्लेशियल काल के अंत के साथ ही हो गया होगा। बोल्डर कॉग्लोमरेट में उपलब्ध संपूर्ण सामग्री नामक पाषाण द्वारा निर्मित है। प्रत्येक वस्तु में ट्रैकिंग पाषाण के एक ही ओर हुई है। फ्लैग काफी बड़े परंतु अत्यधिक घिसे हुए हैं। इन उपकरणों का आकार प्रायः कोन के सदृश है। इनके नीचे का भाग चौड़ा है और ऊपर का भाग नुकीला होता गया है। दीर्घ प्रयोग अथवा कालातिपात के कारण इनके किनारे टूट फूट गए हैं। पंजाब में सोहन सरिता के तटों पर बहुत सी पाषाण सामग्री उपलब्ध हुई है जो सोहन इंडस्ट्री के अंतर्गत परिगणित होती है। उपयुक्त बोल्डर कागलोमरेट में प्राप्त पाषाण सामग्री सोहन इंडस्ट्री में नितान्त पृथक और पूर्वकालीन है, अतः इसे प्री सोहन इंडस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा, द्वितीय इंटरग्लेशियल काल, पूर्वकालीन सोहन इंडस्ट्री। नदियों, झीलों और समुद्रों का पानी जब घट जाता है या दिशा परिवर्तित कर देता है तो किनारों पर डालू जमीन निकल आती है। इसी डालू जमीन को अंग्रेजी में कगार कहते हैं। द्वितीय इंटरग्लेशियल काल की जलवायु काफी शुष्क थी। इस समय पंजाब की सोहन नदी की घाटी में अनेक कगार बन गए। प्रथम कगार में अनेक पाषाण निर्मित उपकरण मिले हैं। इन्हें पूर्वकालीन सोहन इंडस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। ये तीन कोटियां हैं, अ, ब और स में विभक्त किए गए हैं। अ कोटी के उपकरण कालातिपात के कारण अत्यधिक टूट फूट और घिस गए हैं। इन पर गहरी काई और मिट्टी जम गई है। ब कोटी के उपकरणों पर भी गहरी काई और मिट्टी जमी मिलती है परंतु वे टूटे फूटे नहीं है। स कोटी के उपकरणों पर कोई उपकरणों पर काई और मिट्टी कम है, वे अपेक्षाकृत नवीन प्रतीत होते हैं। समस्त उपकरण दो प्रकार के हैं, पेवल उपकरण और फ्लैक उपकरण। पेवल उपकरण टूटे पत्थरों के टुकड़ों से अथवा पत्थरों के टुकड़ों को तोड़कर बनाए गए थे। आकृति में ये चौड़े और अथवा गोल। फ्लैक उपकरण दो प्रकार के हैं, कुछ बड़े हैं जिनकी सतह बिल्कुल सरल और सादी है। यह सतह विशाल कोण बनाती है। इनके अतिरिक्त कुछ छोटे फ्लैक उपकरण भी हैं जिनकी मूल सतह पर फ्लैकिंग अनेक स्तहें बन जाती हैं। इन स्तहों के कोण छोटे हैं। समस्त उपकरणों को देखने से प्रतीत होता है कि तत्कालीन मानव की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर और सुंदर उपकरण बनाने की हो रही थी। इन उपकरणों के साथ साथ कुछ हैंडएक्स भी उपलब्ध हुई हैं, जो दक्षिणी भारतवर्ष की मद्रास इंडस्ट्री के सदृश और समकालीन हैं। इनकी तुलना अबैथिलियो अचुलियन प्रणाली के अंतर्गत निर्मित यूरोपीय पाषाण सामग्री के साथ की जा सकती है। तीसरा, तृतीय ग्लेशियल काल अथवा हिमकाल और उत्तरकालीन सोहन इंडस्ट्री। पूर्वकालीन सोहन इंडस्ट्री के पश्चात तृतीय ग्लेशियल अथवा हिमकाल का प्रादुर्भाव होता है। इस काल की पाषाण सामग्री सोहन घाटी की द्वितीय कगार अर्थात T2 में उपलब्ध हुई है। इस सामग्री को उत्तरकालीन सोहन इंडस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। संपूर्ण सामग्री दो भागों और ब में विभक्त की गई है। अ, इसके अंतर्गत वह सामग्री आती है जो पुतवर की धरा के ऊपर एकत्र हुए पाषाण कणों और सिकता राशि में पाई गई है। इसके पेवल उपकरण अनेक प्रकार के हैं और पूर्वकालीन सोहन प्रणाली के अंतर्गत निर्मित उपकरणों की अपेक्षा अधिक सुंदर और व्यवस्थित हैं। उनके साथ पाए गए फ्लैक उपकरणों की संख्या पहले की अपेक्षा अधिक है। फ्लैकिंग लेवलाइजियन है। ब, कालांतर में आंधी तूफान, जल प्रवाह और ग्लेशियल के परिणाम स्वरूप पोतवर की धरा के ऊपर पूंजीभूत पाषाण कणों और सिकता राशि के ऊपर पुनः मिट्टी, बालू इत्यादि की मोटी सतह जम गई। ब कोटी के अंतर्गत परिगणित उत्तरकालीन सोहन सामग्री इसी ऊपरी सतह से निकली है। इसके उपकरण अति नवीन और अक्षत हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पाषाण सामग्री में अबैबिलियो अचिलियन प्रणाली अर्थात मद्रास प्रणाली की कोई भी हैंडेक्स उपलब्ध नहीं होती। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि उस समय तक दुधारा इंडस्ट्री का विलोप हो गया था, परंतु सोहन इंडस्ट्री विकसित अवस्था में थी। इस बाकोटी की सामग्री में फ्लैक और ब्लेड की संख्या अधिक है। लगभग आधे फ्लैकों के ऊपर अनेक छोटी छोटी सतहें हैं। फ्लैकिंग उत्तरकालीन लेवलाइजियन है। चौथा, तृतीय इंटरग्लेशियल काल, चौंत्र इंडस्ट्री। उत्तरकालीन सोहन इंडस्ट्री अति विशाल क्षेत्र में विस्तृत थी। इसका विस्तार शिमला प्रदेश तक था। इसके कुछ उदाहरण सोहन सरिता पर स्थित चौंत्र नामक स्थान में भी उपलब्ध हुए हैं। पुरातत्व की दृष्टि से चौंत्र स्थान अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो सामग्री उपलब्ध हुई है उसमें मद्रास इंडस्ट्री के आधार पर निर्मित हैंडेक्स भी हैं, सोहन इंडस्ट्री के पेवल और फ्लैग उपकरण भी हैं और प्री सोहन इंडस्ट्री के कुछ फ्लैग भी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान पर दक्षिणी और उत्तरी भारत की परंपराएं साथ साथ पनप रही थीं। इसी आधार पर डिटेरा का मत है कि आदि मानव पंजाब में दक्षिण भारत से आया था। वह अपने साथ हैंडेक इंडस्ट्री भी लेता आया था। पीएचडी के शाकाइलिया के मतानुसार यह चंद्र इंद्रस्थित तिथि इंटरग्लेशियल काल की है। पांचवा, चतुर्थ ग्लेशियल काल अथवा हिम काल इवॉल्ड सोहन इंडस्ट्री 1932 में टांड महोदय ने पिड्डी खेप से कुछ मील दूर थोक पठार में कुछ पासार सामग्री उपलब्ध की। इसके पेवल उपकरण और कोर सोहन प्रणाली पर निर्मित प्रतीत होते हैं। इसकी फ्लैकिंग भी उत्तरकालीन सोहन आके सदृश है। प्रसिद्ध विद्वान पेटरसन का मत है कि इंडस्ट्री काफी बात की है, या तो यह उत्तरकालीन सोहन इंडस्ट्री के समकालीन है या उसके बाद की। मोवियस ने इस इंडस्ट्री को इवलोड सोहन की संज्ञा दी है। श्री संकालिया के मतानुसार इसका उद्भव चतुर्थ ग्लेशियल काल अथवा हिम काल में हुआ था। येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन ने पंजाब की भांति कश्मीर में भी अनुसंधान किए और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। कश्मीर में ग्लेशिएशन के समय ग्लेशियर के दोनों तटों पर शिलाखंडों, लघु पाषाणों और बालुका समूह की एक लंबी पंक्ति बन गई थी। अंग्रेजी में इसे मोरेन कहते हैं। कालांतर में इस मोरेन के ऊपर डिपोजिट संग्रहित हो गई, जिसे लोअर केरिवा के नाम से पुकारते हैं। उत्खनन में इस करेवा में प्राचीनतम हाथी के अवशेष मिले हैं, जो प्लाइस्टोसीन काल के प्रारंभिक चरण का है। इसी प्रकार और काल के हाथी के अवशेष पश्चिमी पंजाब के उपयुक्त पोतवर प्रदेश में उपलब्ध हुए हैं। कश्मीर के इस लोअर करेवा में जो पाषाण उपकरण उपलब्ध हुए हैं, वे पोतवर प्रदेश में प्राप्त पूर्वोल्लिखित उपकरणों के ही समान हैं। ये उपकरण भी प्री सोहन इंडस्ट्री के अंतर्गत रखे गए हैं। कालांतर में लोअर करेवा के ऊपर पुनः डिपोजिट एकत्रित होती गई और इस प्रकार अपर करेवा का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव द्वितीय इंटर ग्लेशियल काल में हुआ था। इस करेवा में उपलब्ध सामग्री पूर्वकालीन सोहन इंडस्ट्री के समान है। मध्य भारत और पश्चिमी भारत में जो अनुसंधान कार्य हुए हैं, वे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रदेश के द्वारा उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की इंडस्ट्रीज का संपर्क संबंध स्थापित हुआ था। इसी प्रदेश के द्वारा पूर्वी पाषाण काल में उत्तरी और दक्षिणी भारत के मनुष्यों के विचारों का आदान प्रदान हुआ था। 1941 से 1942 में सर्वश्री एचडी संकालिया, बीडी कृष्णस्वामी और बीके चटर्जी ने गुजरात में साबरमती की घाटी में अनुसंधान कार्य किया। पृथ्वी की निम्नतर स्थान में जो बाजार सामग्री निकली, उसमें सोहन सामग्री के पेवल उपकरण भी थे। मद्रास प्रणाली की हैंडेक्स भी। इस प्रकार पोतवर प्रदेश में अनुसंधान करने के पश्चात डीटेरा ने नर्मदा की घाटी में भी अनुसंधान कार्य किया। उत्खनन में तीन प्रकार की सतह निकली, पहला निम्न, दूसरा उधर्व और तीसरा कॉटन सॉयल। पहला निम्न सतह में प्री सोहन प्रणाली के फ्लैक और अवेलियो अचिलियन प्रणाली के हैंडेक्स और क्लेवर निकले। यह सामग्री मिट्टी की मोटीता से ढकी थी। इस तह में पूर्वकालीन सोहन प्रणाली के फ्लैक और उत्तरकालीन अचिलियन प्रणाली के हैंडेक्स उपलब्ध हुए। दूसरा उधर्व सतह के अचिलियन प्रणाली के दुधारा उपकरण और उत्तरकालीन सोहन प्रणाली के पेवल उपकरण फ्लैक और कोर निकले। तीसरा कॉटन सॉयल से विभिन्न पत्थरों के छोटे छोटे ब्लेड और स्केपर निकले हैं। ये माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। सोहन घाटी की पांचवी कगार अर्थात T5 में भी इस प्रकार की सामग्री निकली है। इसका उल्लेख आगे किया जाएगा। मिर्जापुर के रिहंद प्रदेश में भी प्रारंभिक अनुसंधान हुए हैं। वहाँ भी सोहन प्रणाली के पेवल उपकरण और मद्रास प्रणाली के हैंडेक्स उपलब्ध हुए हैं। इसी प्रकार गंगा जमुना के आव को छोड़कर देश के अन्य विभिन्न स्थानों पर भी अनुसंधान हुए हैं, परंतु अभाग्यवश अभी तक हमें आदिमानव का कोई अस्थि पंजर उपलब्ध नहीं हो सका है, जिसके आधार पर हम उसकी जाति के विषय में अनुमान कर सके। इसी प्रकार आदिमानव का आदि निवास स्थान भी अभी तक संदेहपूर्ण ही है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य प्रथम इंटरग्लेशियल काल से लेकर तृतीय इंटरग्लेशियल काल तक पंजाब में निवास करता रहा। इस प्रदेश में मानव के हथियार और औजार तो मिले ही, परंतु अभाग्यवश उसके अस्थि पंजे उपलब्ध नहीं हुए। अतः हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि इस प्रदेश के निवासी एक ही जाति के थे अथवा विभिन्न जातियों के। सारांश, उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व पाषाण काल की सर्वप्रथम सामग्री मध्य प्लाइस्टोसीन काल में ग्लेशिएशन के अंत में आविर्भूत हुई। यह सामग्री बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट में उपलब्ध प्री सोहन की फ्लैक इंडस्ट्री है। यह पूर्वी एक्लिका के पूर्व पाषाण काल के प्रारंभिक चरण की क्लेक्टोनीस प्रणाली के अंतर्गत निर्मित पाषाण सामग्री के सदृश है। उत्तर पश्चिमी भारत की सोहन इंडस्ट्री कालांतर की है। द्वितीय इंटरग्लेशियल काल की। इसके फ्लैग कोर और पेबल चापर क्लिटोलिबलाइजियन प्रणाली के समान है। इस प्रकार दक्षिण भारत की मद्रास इंडस्ट्री का उद्भव द्वितीय इंटरफ्लुवियल काल में हुआ। यह इंडस्ट्री यूरोप और अफ्रीका की कप डी पॉइंग इंडस्ट्री के समान है। पूर्वकालीन सोहन इंडस्ट्री और मद्रास इंडस्ट्री पूर्व पाषाण काल के प्रारंभिक चरण में आती है। इसका विकास द्वितीय इंटरग्लेशियल और तृतीय ग्लेशियल काल में होता रहा। पूर्व पाषाण काल के उत्तर चरण में चतुर्थ ग्लेशिएशन के समय भारतवर्ष में अधिकांश में फ्लैग इंडस्ट्री की प्रचुरता रही। इसके साथ साथ एक नवीन इंडस्ट्री ब्लेड इंडस्ट्री का भी प्रादुर्भाव हुआ। टाड ने बम्बई के अपर ग्लेवेल में और बर्किट ने कार्नूल प्रदेश में इसके उदाहरण पाए हैं। यह इंडस्ट्री यूरोप की ऑरिग्नेशियन इंडस्ट्री के समान है। विदेशों से समता। उत्तरी पश्चिमी भारत की पूर्वकालीन सोहन प्रणाली के अंतर्गत निर्मित फ्लैग उपकरण यूरोप की क्लेक्टोनियन प्रणाली के उपकरणों के समान है, परंतु अमेरिकन पुरातत्ववेत्ता पोवियश का मत है कि समान होते हुए भी उन्हें एक स्वतंत्र वर्ग के अंतर्गत रखना चाहिए। इसमें अपेक्षाकृत समान रूपा भारत की सोहन प्रणाली, ब्रह्मा की एनाथियन प्रणाली और मलाया की तम्पेनियन प्रणाली, जावा की पजीतेनियन प्रणाली और कदाचित चीन की चाउ काउ तेन प्रणाली आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पैलियोन्थ्रोपिक मूल के मानव ने मध्य प्लाइस्टोसीन काल में 400,000 से 2,000 वर्ष पूर्व समस्त पूर्वी एशिया में अपनी चॉपर उपकरण की विशिष्ट प्रणाली का प्रयोग किया था, परंतु गंगा जमुना दुआब में चॉपर उपकरण का कोई भी उदाहरण उपलब्ध नहीं हुआ है। इसलिए उत्तरी पश्चिमी भारत से लेकर चीन तक के विशाल प्रदेश में इस प्रणाली के सकर्म प्रसार को स्वीकार करने में बाधा पड़ती है, परंतु संभव है कि भविष्य के अनुसंधान इस बीच के रिक्त स्थान में इस प्रणाली के कतिपय उदाहरण ढूंढ निकालें। पुनः श्रीवीडी कृष्ण स्वामी का मत है कि पूर्वकालीन सोहन प्रणाली और ब्रह्मा मलाया जावा की प्रणाली में कुछ असमता भी है। सोहन प्रणाली पर क्लेक्टोलिब्जाइजियन प्रभाव है और उसके अंतर्गत बने कुछ कोर उपकरण अति सुव्यवस्थित हैं। इसके विरुद्ध ब्रह्मा मलाया जावा की पासार सामग्री अपेक्षाकृत भद्दी है और उस पर क्लेक्टोलिब्जाइजियन प्रभाव का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में दोनों के एक मूल का कहना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। एक पश्चिमी एशियाई मूल की प्रणाली है और दूसरी पूर्वी एशियाई मूल की। दक्षिणी भारत की मद्रास इंडस्ट्री दक्षिणी अफ्रीका की स्टेलिनवास इंडस्ट्री के समान है। पिगट महोदय के अनुसार यह फ्रांस और दक्षिणी इंग्लैंड में भी दृष्टिगत होती है। अतः कोर उपकरण प्रणाली के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका, अरब और दक्षिणी भारत आते हैं। पिगट महोदय का मत है कि कदाचित यह इंडस्ट्री होमो स्पेंस की देन थी। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि पूर्व पाषाण काल के उत्तर चरण में एक नवी इंडस्ट्री ब्लेड इंडस्ट्री का आविर्भाव हुआ, यह दक्षिणी भारत की विल्टन इंडस्ट्री से मिलती जुलती है। यूरोप में भी इसके उदाहरण मिले हैं। प्रोफेसर गेरॉड का मत है कि इस नवी इंडस्ट्री का केंद्र बिंदु फिलिस्तीन था। पूर्व पाषाण कालीन जीवन। पूर्व पाषाण कालीन मानव का जीवन नितांत बर्बर था। यह पूर्णतः प्रकृति जीवी था। कृषि कर्म से अपरिचित होने के कारण वह सहज रूप में उत्पन्न होने वाले फल फूल और कंदमूल आखेट में मारे गए पशुओं तथा सरिताओं और झीलों के तटों पर पकड़ी गई मछलियों से ही अपनी उदरपूर्ति करता था। अनेक स्थलों पर मनुष्य की पाषाण सामग्री और पशुओं के अस्थि पंजर साथ साथ मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य अनेक पशुओं से परिचित था, यद्यपि अभी तक उसने उन्हें पालने की कला का विकास न किया था। कृषि कर्म और पशुपालन के अभाव में मनुष्य की खाद सामग्री सीमित हो गई थी, परंतु उस समय जनसंख्या अल्प थी। अतः प्रकृतिजन फल फूल और कंदमूल तथा मानवों उपलब्ध मांस मछली ही उसके जीवन यापन हेतु पर्याप्त होते होंगे। अधिकांश विद्वानों का मत है कि भारतवर्ष के पूर्व पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार न हुआ था। ऐसी स्थिति में तत्कालीन मनुष्य कच्चा मांस आदि ही खाता था। उस समय मनुष्य का सर्वोपरि प्रश्न आत्मरक्षा रहा होगा। वह प्रकृति के प्रकोपों, महाशीत, अतिवृष्टि, आप्लावन और छंछावाट आदि से संत्रस्त था। उसके चतुर्विक वन्य पशु भी कम भयावह न थे, अतः इनसे आत्मरक्षा के हेतु उसे निवास स्थान की आवश्यकता थी। सर्वप्रथम उसने सघन वृक्षों को चुना होगा, परंतु कालांतर में उन्हें अधिकांश उपयुक्त न देखकर उसने सरिताओं के कागारों और पर्वतों की कंदराओं की शरण ली। उत्खनन में अधिकांश पाषाण सामग्री इन स्थानों के समीप उपलब्ध हुई है। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य वास्तुकला और मृत्भांड कला दोनों से ही अपरिचित था। उसको सृजनात्मकता का प्रदर्शन उसके हथियारों और औजारों के रूप से ही हुआ है। पूर्व पाषाण कालीन मानव का एक प्रमुख उद्यम आखेट था। यह अनेक प्रकार से लाभकर सिद्ध हुआ। हिंसक पशुओं की हत्या से मानव जीवन अधिक सुरक्षित हो गया। मारे गए पशुओं के मांस के रूप में मनुष्य को एक अतिरिक्त खाद्य मिल गया। इससे उसकी जीवन यात्रा और अधिक सुगम हो गई। मृत पशुओं के चर्म से वस्त्र और अस्थि से हथियार औजार बन सकते थे। पुनः परोक्ष रूप से आखेट शारीरिक पौनता और मनोविनोद के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। आखेट के लिए मनुष्य को घातक साधनों की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी, अतः सर्वप्रथम उसने वृक्षों की शाखाओं और लट्ठों का ही प्रयोग किया होगा। इनसे छोटे छोटे निर्बल पशुओं का तो आखेट हो सकता था, परंतु बड़े और अधिक भयंकर पशुओं के आखेट के लिए मनुष्य को अन्य किसी सुदृढ़ और पैने साधन की आवश्यकता प्रतीत हुई। आदि मानव ने जब चतुर्विक दृष्टिपात किया तो सबसे अधिक उपयोगी पाषाण ही जान पड़ा। पहले उसने सहज पाषाण खंडों से आखेट करना प्रारंभ किया, परंतु कालांतर उनके हथियारों औजारों आयुध का आविष्कार पूर्व पाषाण काल की एक क्रांतिकारी घटना है। प्रयुक्त पाषाण अनेक प्रकार के थे। इनमें क्वेटरसाइट, सैंडस्टोन, लैटरिस्टेज, चेलिस्टोनी और जेनेसिस विशेष उल्लेखनीय हैं। इन पाषाणों से उनसे अनेक आकार प्रकार के हथियार औजार बनाए, जिनमें प्रमुख हैं हैंडेक्स, कॉपर, स्पेंसर, क्लेवर, कोर, टीज, ब्लेड आदि। महत्वपूर्ण प्रणालियों में उत्तरी भारत की फ्लैग प्रधान सोहन प्रणाली और दक्षिणी भारत की कुल्हाड़ी प्रधान मद्रास प्रणाली विशेष प्रसिद्ध है। पाषाण सामग्री पर चिपिंग और फ्लैकिंग दोनों मिलती हैं। प्रारंभ की सामग्री बड़ी बेडौल और अव्यवस्थित थी, परंतु कालांतर में वह लघु रूप सुडौल और सुव्यवस्थित होने लगी। अपने विविध औजारों और हथियारों की सहायता से पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य तोड़ने, काटने, छिलने, खोदने, जोड़ने आदि के कार्य करता था। इन्हीं की सहायता से वह पशुओं को मारता, उनकी खाल और हड्डी निकाल और उनसे अपने वस्त्र और आयुध इत्यादि बनाता था। पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य ने लकड़ी और हड्डी के भी हथियार औजार बनाए थे, परंतु कालातिपात के कारण वे नष्ट हो गए। ऐसा विश्वास किया जाता है अति बर्बर अवस्था में होने के कारण पूर्व पाषाणकालीन मनुष्य में किसी प्रकार की धार्मिक अथवा लोकोत्तर भावना का उदय न हुआ था। उत्खनन में कोई भी ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है जिससे उसके देवी देवता अथवा उपासना विधि का अनुमान हो सके। वह शवों को धरा पर ततः फेंक देता था, जहाँ उन्हें पशु पक्षी खा जाते थे अथवा कालातिपात से वे स्वयं मिट्टी में मिल जाते थे। उत्खनन में न तो मृतकों की समाधियाँ मिली हैं और न उनके दाह के अवशेष ही, परंतु फिर भी हम अनुमान कर सकते हैं कि पूर्व पाषाण काल की कठोर स्थली में सभ्यता के अनेक अंगों का ईषत एवं परोक्ष रूप में बीजारोपण हो चुका था। विशाल एवं भयंकर पशुओं का आखेट एक व्यक्ति के द्वारा नहीं वरन अनेक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न के द्वारा होता था। उनके सामूहिक कार्य ने उनके मस्तिष्क में संगठन और सहयोग की भावना को जन्म दिया होगा। उनके खाद्य अखाद्य कंद मूल फलों के अभिज्ञान में ही आधुनिक वनस्पति विज्ञान के बीज विद्यमान थे। तत्कालीन मनुष्य ने आखेट के निमित्त पशु स्वभाव का अध्ययन किया होगा। सुगमता पूर्वक उनकी हत्या करने के हेतु उपयुक्त कालों और ऋतुओं का ज्ञान प्राप्त किया होगा। इसी प्रारंभिक ज्ञान से कालांतर में पशु विज्ञान, जलवायु विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान की निष्कृति हुई। संसार के विभिन्न देशों के पूर्व पाषाण काल पर विचार करते हुए गार्डन चाइल्ड का उल्लेख है कि वन परंपरा में वनस्पति विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान और जलवायु विज्ञान का मूल अंतर्निहित है। भारतीय पूर्व पाषाण काल के लिए भी सत्य है। मध्य पाषाण काल प्रारंभ में विद्वानों का मत था कि भारतवर्ष के पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बीच एक अंतराल है, परंतु अब यह मत निराधार सिद्ध हो गया है। बर्किट और टाड ने कार्नूल और मुंबई में जो उत्खनन किए उनमें उन्हें पूर्व पाषाण काल से लेकर उत्तर पाषाण काल तक के सकर्म एवं संपत्ति इतिहास के प्रमाण मिले। डी टेरा का भी मत है कि पोतवार की पोस्ट ग्लेशियल सिल्ट में पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बीच की सामग्री अंतरित है। दोनों कालों के बीच का यह मध्यांतर माइक्रोलिथिक और प्रोटोनियोलिथिक काल है। यह काल पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बीच में होने के कारण संक्रांति काल था। ग्लेशियल काल के पश्चात यूरोप और उत्तरी तथा पूर्वी अफ्रीका की जलवायु पहले से कहीं अधिक उष्ण और शुष्क हो गई। वहां एक नवीन जाति का उदय हुआ। इसके उपलब्ध अस्थि पंजरों को देखने से प्रतीत होता है कि यह हेमिटिक नेग्राइड मूल की थी, जो प्रोटो इजिप्शियन से मिलती जुलती है। भारतवर्ष में भी इस जाति के कतिपय अस्थि पंजर उपलब्ध हुए हैं। अस्तु नवीन जाति और नवीन जलवायु के साथ साथ एक नवीन इंडस्ट्री का उदय हुआ। यह इंडस्ट्री पूर्व पाषाण काल के उत्तर चरण वेद इंडस्ट्री पर ही आधारित थी, परंतु इसे लघु रूपता का प्रश्रय लिया। परिणामतः इस नवीन इंडस्ट्री के अंतर्गत बने उपकरण उत्तरोत्तर अति लघु होते गए। अंत में कुछ उपकरण तो 1 इंच से भी छोटे होने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उपकरण 1/2 इंच से 3/4 इंच तक होते थे और इसी हैंडल में फिट करके प्रयुक्त किए जाते थे। अत्यधिक छोटे होने के कारण ये उपकरण माइक्रोलिथ के नाम से पुकारे जाते हैं। उपलब्ध माइक्रोलिथ उपकरण के ब्लेड, पॉइंट और स्क्रेपर, इनग्रेवर, ट्रायंगल, कैसेट, ट्रेपेज विशेष उल्लेखनीय है। ये सब जस्पर, फिलेट, एगेट, चर्ट, कर्नेलियन, क्वार्ट्ज और क्लेस्टोनी आदि से बनाए जाते थे। भारतवर्ष में ये जमालगढ़ी अर्थात पेशावर जिला से लेकर सारेपुरम अर्थात तिन्नेवेली जिला और कराची से सरायकला अर्थात बिहार तक पाए गए हैं। परंतु इन माइक्रोलिथ के काल के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। ब्रूस फुट महोदय इन्हें उत्तर पाषाण काल के साथ संबद्ध करते हैं। डीटेरा, टार्ड, गार्डन आदि विद्वान इन्हें प्रोटोनियोलिथिक कोटी में रखते हैं। अनेक स्थलों पर ऐसा देखा गया है कि ये माइक्रोलिथ वास्तव में मध्य पाषाण काल के नहीं हैं। मध्य पाषाण काल के पश्चात भी उनकी परंपरा चलती रही। उनका प्रयोग ऐतिहासिक काल तक में मिलता है। यही कारण है कि उनके काल निर्धारण में बड़ी कठिनाई पड़ती है। ब्रह्मगिरी अर्थात मैसूर में रोप्पा गांव के पास उत्खनन किया गया। इसमें पृथ्वी के नीचे 5 फीट की गहराई पर दोनों माइक्रोलिथ और नियोलिथ प्राप्त हुए, परंतु और नीचे 8 फीट की गहराई पर एकमात्र माइक्रोलिथ ही मिले। इससे सिद्ध हो गया है कि नियोलिथ की अपेक्षा माइक्रोलिथ अधिक प्राचीन है। अतः उनका काल पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बीच में ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वे मध्य पाषाण काल की सामग्री है। इसी प्रकार पंजाब में उचाली में माइक्रोलिथ उत्तर पाषाण कालीन मृत पात्रों और होमो स्पेन्स के अवशेषों के साथ मिले हैं। ये माइक्रोलिथ उत्तर पाषाण काल के पूर्व के अतः मध्य पाषाण काल के माने गए हैं। 1941 से 1945 में संकालिया और उनके सहयोगियों ने गुजरात की साबरमती घाटी में अनुसंधान किए और हीरपुरा, लागनाज, अखज और ब्लाशन आदि स्थानों पर माइक्रोलिथ प्राप्त किए। इनके साथ ही कोई भी धातु उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नतर स्तर पर मृत पात्रों का भी अभाव है। पुनः माइक्रोलिथ के साथ जो पशुओं की हड्डियां और मानव अस्थि पंजर मिले हैं, वे अत्यधिक प्राचीन प्रतीत होते हैं। इन सब विशेषताओं के कारण ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये माइक्रोलिथ कदाचित पाषाण कालीन होंगे। कोमियाडे महोदय ने कार्नुल में बहुसंख्यक माइक्रोलिथ प्राप्त किए, जो बांदा और विंध्य प्रदेश में प्राप्त लूनेट, प्लेट और आदि माइक्रोलिथ के समान है। इसी प्रकार गोदावरी प्रदेश में भी माइक्रोलिथ उपलब्ध हुए हैं, परंतु इनके साथ प्रोटोहिस्टोरिक काल तक की सामग्री प्राप्त हुई है। इससे प्रतीत होता है कि ये माइक्रोलिथ बहुत बाद के हैं, मध्य पाषाण काल के नहीं। इसी प्रकार पश्चिमी भारत में टार्ड और मध्य भारत में गार्डन के अनुसंधानों ने सिद्ध कर दिया है कि इन देशों में माइक्रोलिथ इंडस्ट्री उत्तर पाषाण काल से लेकर बौद्ध काल के पूर्व तक पनपती रही। समस्त साक्ष्यों से यही प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में माइक्रोलिथ का उदय मध्य पाषाण काल में हुआ था, यद्यपि उसकी परंपरा ऐतिहासिक काल तक चलती रही। यह नितांत संभव ही है, परंपराएं जल्दी नष्ट नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया के कुछ आदिम निवासी आज तक माइक्रोलिथ उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में माइक्रोलिथ इंडस्ट्री पश्चिम से आई थी। यदि इसका प्रादुर्भाव पूर्व में हुआ होता तो इसके उदाहरण ब्रह्मा में अवश्य मिलते, परंतु डॉक्टर मोवियस के सुविस्तृत अनुसंधानों के पश्चात भी वहाँ मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। प्रोटोनियोलिथिक इंडस्ट्री पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल में माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री के साथ साथ एक अन्य इंडस्ट्री का आविर्भाव हुआ। यह इंडस्ट्री माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री से नितांत भिन्न थी। यह फ्लेल्ट इंडस्ट्री थी। इसकी विशेषता है पतले और लंबे ब्लेड तथा पतले कोन के आकार के कोर। यह इंडस्ट्री कालांतर में मोहनजोदड़ो की पाषाण इंडस्ट्री में मिलती जुलती है। इसी समता के आधार पर कतिपय विद्वानों का मत है कि यह भारतीय इंडस्ट्री थी, विदेशी नहीं। इसी से कालांतर में सिंधु सभ्यता विकसित हुई। अतः सिंधु सभ्यता का मूल स्रोत भी भारतीय है। सर्वप्रथम 1866 में इवांस महोदय ने इंडस्ट्री के कुछ उपकरण सिंध में सक्कर और रोहरी में प्राप्त हुए। कालांतर में ड्रम्ड और पेटेशन इसका अध्ययन किया और 1931 1931 में ये दोनों विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इंडस्ट्री पूर्व पाषाण काल के पश्चात की और उत्तर पाषाण काल के पूर्व की है। इसे प्रोटोनियोलिथिक इंडस्ट्री का नाम दिया गया। समस्त साक्ष्यों पर विचार करने से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में मध्य पाषाण कालीन मनुष्य छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहता था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से अनभिज्ञ था। उसका प्रमुख उद्यम आखेट था। वह गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, मछली और घड़ियाल आदि से परिचित था। आखेट में मारे गए पशु पक्षियों के मांस और झीलों तथा सरिताओं के तटों पर पकड़ी गई मछलियों के अतिरिक्त वन में सहज उत्पन्न फल फूल और कंदमूल भी उसकी उदरपूर्ति के साधन थे। उत्खनन में उसके अनेक प्रकार के हथियार औजार मिले हैं। उनमें कोर, प्लाइंट, केपर, आयताकार और ऊर्ध्वचंद्राकार ब्लेड विशेष उल्लेखनीय है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था। उत्खनन में अनेक अस्थि पंजर मिले हैं। इनमें कुछ के शीर्ष पूर्व की ओर है और कुछ के पश्चिम की ओर। शीर्ष के समीप अनेक प्रकार की पाषाण सामग्री भी उपलब्ध हुई थी। ऐसा अनुमान किया जाता है कि तत्कालीन मनुष्य के दफन से संबंध रहने वाली किसी अनुष्ठान मूलक विशिष्ट प्रणाली का विकास कर लिया हो। बहुत संभव है कि उसमें लोकोत्तर जीवन के विषय में भी किसी प्रकार की भावना का बीजारोपण हुआ हो। आश्चर्य की बात है कि अनेक स्थलों पर मानव अस्थि पंजर के समीप कुत्ते के अस्थि पंजर भी उपलब्ध हुए हैं। संभव है कि मनुष्य के इस प्राचीन सहचर का कुछ धार्मिक महत्व भी रहा हो। उत्तर पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के पश्चात पाषाण काल का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु यह कहना कठिन है कि यह प्रादुर्भाव कब और किस जाति के द्वारा हुआ। फिर भी इतना निश्चित है कि उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता भारतवर्ष के विशाल भू प्रदेश में व्याप्त थी। तत्कालीन सामग्री काश्मीर, सिंधु प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मैसूर और प्रमुखतया बेलरी जिले में उपलब्ध हुई है। जिस प्रकार पूर्ण पाषाण कालीन सामग्री प्रमुखतया क्वार्टजाइट की है और मध्य पाषाण कालीन सामग्री कैल्सेडोनी, जैस्पर, जट और ब्लड स्टोन की, उसी प्रकार उत्तर पाषाण कालीन सामग्री प्रधानतः गहरे हरे ट्रप की है। पुनः पूर्वकालीन पाषाण सामग्री के ऊपर पॉलिश नहीं मिलती। इसका आविर्भाव सर्वप्रथम उत्तर पाषाण काल में हुआ। उत्तर पाषाण कालीन हथियारों औजारों पर या तो संपूर्ण भाग पर पॉलिश है या कम से कम ऊपर और नीचे के सिरों पर। इस समय के जो हथियार और औजार मिले हैं उनमें सेल्ट, कुल्हाड़ी, एड, सिल्क स्टोन फैब्रिकेटर, पॉलिशर और हैमर स्टोन विशेष उल्लेखनीय हैं। 1860 में सर्वप्रथम ली मैस्यूरी ने उत्तर प्रदेश की टोन सरिता की घाटी में उत्तर पाषाण कालीन पॉलिशदार सिल्ट प्राप्त किए थे। 1872 में विलियम फ्रेजर ने बेलौरी को दक्षिण भारत की उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र बिंदु घोषित किया। तत्पश्चात फूट ने भी बहुसंख्यक उत्तर पाषाण कालीन सामग्री का संग्रह किया। 1936 में पैटरसन महोदय ने इस संग्रह का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि इस संग्रह की सामग्री अति प्राचीन है। इस संग्रह में कुछ हथियार और औजार सक्खर और रोहिणी के प्रोटो नियोलिथिक हथियारों और औजारों के समान है। अतः स्पष्ट है कि फूट संग्रह सामग्री ठीक प्रोटोनियोथिक काल की अनुगामिनी है। 1947 में ब्रह्मगिरी के उत्खनन में पॉलिशेड स्टोन एक्स कल्चर का पता लगा। इस नवीन सभ्यता के अंतर्गत मनुष्य माइक्रोलिथ और उत्तर पाषाण कालीन सिल्ट के साथ साथ तांबे और कांसे की सामग्री भी प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ हाथ से बने हुए कुछ मित्र पात्र भी मिले हैं। इस सभ्यता के प्रतिपादक शवों को दफनाते थे। संपूर्ण सभ्यता का काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक है। इसमें उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के भी अंश हैं। बेलौरी के उत्तर पूर्व में 3 मील की दूरी पर संगन कल्लू नामक स्थान है। यहाँ पर श्री बी सुब्बा राव ने अनुसंधान किए। उन्होंने अति प्राचीन माइक्रोलिथिक के साथ उत्तर पाषाण कालीन की सामग्री प्राप्त की। इस सामग्री के साथ कोई भी मृत भांड उपलब्ध नहीं हुआ है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि यहाँ की उत्तर पाषाण कालीन सामग्री अति प्राचीन है। काश्मीर में बर्जहोम नामक स्थान पर डी टेरा ने उत्खनन कार्य किया था। यहाँ उन्होंने उत्तर पाषाण कालीन सिल्ट हड्डी के ऑल और पाक भांड पाए। आसाम, छोटा नागपुर तथा उत्तर पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पर ब्रह्मा प्रणाली पर निर्मित सोल्डर्ड सेल्ट्स प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सेल्ट दक्षिणी भारत में गोदावरी प्रदेश तक प्राप्त हुए हैं। इनसे ऐसा अनुमान होता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया एक विशिष्ट प्रकार की उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का केंद्र था। वहीं से यह सभ्यता भारतवर्ष में भी प्रसारित हुई होगी। भारतवर्ष के अधिकांश में उत्तर पाषाण कालीन के पश्चात क्रमशः ताम्रकाल अथवा काश्य तथा लोह काल का उदय हुआ, परंतु ब्रह्मगिरी ऐसे कुछ प्रदेशों में उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता ऐतिहासिक काल तक चलती रही। उत्तर पाषाणकालीन जीवन। उत्तर पाषाणकाल की जलवायु पूर्वकालीन जलवायु की अपेक्षा मानव जीवन के लिए अधिक उपयुक्त थी। न उसमें अत्यधिक शीत था और न अत्यधिक आर्द्रता। ऐसी जलवायु में जनसंख्या भी बड़ी और मनुष्य की बुद्धि भी। दीर्घकालीन परिश्रम और अनुभव से लाभ उठाकर उत्तर पाषाणकालीन मनुष्य ने कुछ ऐसे आर्थिक और वैज्ञानिक परिवर्तन किए जिन्होंने सभ्यता की गति को द्रुततर कर दिया। पहला, कृषि कर्म। उत्तर पाषाण काल के पूर्व मनुष्य प्रकृतिजीवी था। सहज रूप में उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल ही उसकी उदर पूर्ति के साधन थे। अपने परिश्रम से वह जिस खाद्य को उत्पन्न करता था वह था एकमात्र पशु मांस और मछली। कृषि कर्म के अपरिचित होने के कारण वह किसी प्रकार का भी अन्न उत्पन्न न कर पाता था। परंतु उत्तर पाषाण काल में परिस्थिति परिवर्तित हो गई। मानव ने कृषि कर्म का ज्ञान प्राप्त किया। उसका यह आविष्कार आज भले ही साधारण प्रतीत होता हो परंतु उस प्राचीन काल में यह महान क्रांति वाहक था। यह कृषि हल की सहायता से होती थी अथवा नहीं, इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि काष्ठ निमित्त होने के कारण तत्कालीन हल नष्ट हो गए हों और अब उनके अस्तित्व का प्रमाण न उपलब्ध हो सके, परंतु अनाज काटने के लिए उसने हसीये का आविष्कार अवश्य कर लिया था। अनाज पीसने के लिए दो विशाल पाषाण खंडों को चक्की के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। मनुष्य की उत्पादित सामग्री में गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, शाक, फल और कपास रहे होंगे। कृषि कर्म का प्रादुर्भाव विश्व के अधिकांश में उत्तर पाषाण काल में ही हुआ था। अतः विद्वानों को स्वभावतः यह जिज्ञासा हुई कि यह कृषि कर्म सर्वप्रथम किस देश में उदित हुआ। इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। पैरी महोदय के मतानुसार यह आविष्कार मिश्न की देन है। इसके विरुद्ध अनेक विद्वान फिलिस्तीन को यह श्रेय देते हैं। रूस के प्रसिद्ध विद्वान बेबीलोव का मत है कि कृषि कर्म का सर्वप्रथम उदय अफगानिस्तान अथवा उत्तरी पश्चिमी चीन में हुआ। जो भी हो, इसमें संदेह नहीं है कि आविष्कार मानव सभ्यता की प्रगति के लिए अति अनिवार्य आवश्यकता थी। भारतवर्ष में कृषि कर्म का ज्ञान विदेश में आया अथवा स्वदेशी अनुभव और प्रयास का प्रतिफल था, इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत संभव है कि संसार के विभिन्न देशों ने स्वतंत्र रूप से कृषि कर्म का ज्ञान प्राप्त किया हो। दूसरा, पशुपालन। मनुष्य को पशुपालन तो आदि काल से ही था, परंतु पशुपालन सर्वप्रथम उत्तर पाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ। विद्वानों का मत है कि उत्तर पाषाण काल में जलवायु पहले की अपेक्षा अधिक शुष्क हो गई, अतः वनों का विलोप होने लगा। परिणाम यह हुआ कि पशु वनों से निकल कर उदर पूर्ति के लिए मानव आवासों के समीप रहने लगे। मानव और पशु के इस सन्निकट निवास ने ही पशुपालन को जन्म दिया। विद्वानों के मतानुसार यह पशुपालन सर्वप्रथम उस प्रदेश में प्रारंभ हुआ जो पामीर, काकेशस और रूसी तुर्किस्तान से घिरा हो। तदुपरांत यह अन्य देशों में भी प्रादुर्भूत हुआ। भारतवर्ष में उत्तर पाषाण काल के पालित पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता और घोड़ा विशेष उल्लेखनीय है। तीसरा, मृत्भांड कला। पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की सामग्री पाषाण निर्मित है। मनुष्यों ने मिट्टी की सहायता से भांड और पात्र बनाना न सीखा था, परंतु उत्तर पाषाण काल में मृत्भांड कला का उदय हुआ। इस आविष्कार का जन्म प्रथमोल्लिखित दोनों आविष्कारों का परिणाम था। कृषि कर्म और पशुपालन ने मनुष्य की खाद्य सामग्री की अभूतपूर्व वृद्धि कर दी। अतः मनुष्य को उसे सुरक्षित और संग्रहित करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। परंतु यह कैसे संभव हो, शीघ्र ही मनुष्य ने उपाय ढूंढ निकाला। उसने मिट्टी की सहायता से भांडों का आविष्कार किया। कदाचित मनुष्य का यह सर्वप्रथम रासायनिक आविष्कार था, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर पाषाणकालीन मृत्भांड कला हाथ की कला थी। समस्त भांड और पात्र हाथ से ही निर्मित होते थे। अभी तक कुम्हार के चाक का उदय न हुआ था। चौथा, वस्त्र निर्माण। पूर्वकालीन मनुष्य अपने शरीर को वृक्षों के पत्तों और छालों तथा पशुओं के चर्म से ढकता था, परंतु उत्तरकालीन मनुष्य ने वस्त्र निर्माण करना भी सीख लिया था। उसने पौधों के रेशों तथा पशुओं के बालों को वस्त्र के रूप में बुनना प्रारंभ कर दिया। कुछ विद्वानों का मत है कि इस काल में पास की कृषि भी प्रारंभ हो गई थी। अनुमानतः अनेक उत्तर पाषाणकालीन देशों के मनुष्यों की भांति उत्तर पाषाणकालीन भारतीय भी पेड़ पौधों के द्रवों और धातु रसों की सहायता से अपने वस्त्र रंगता होगा। कदाचित कताई, बुनाई और रंगाई में मृदुल एवं कलात्मक कार्य उत्तर पाषाणकालीन नारी ही प्रमुखतया करती होगी। पांचवा, गृह निर्माण। पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मनुष्य या तो सरिताओं के खुले हुए कगारों पर रहता था या पर्वतों की कंदाराओं में, परंतु उत्तर पाषाण काल में गृह निर्माण का उदय हुआ। कदाचित मानव निर्मित सर्वप्रथम गृह पशु चर्म का तंबू रहा होगा। कालांतर में मनुष्य ने झोपड़ियों का निर्माण सीखा। ये झोपड़ियां लट्ठे, नरकुल, घास, फूस और मिट्टी की सहायता से बनती थी। छठवां, अस्त्रशस्त्र तथा अन्य उपकरण। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, पूर्व कालों की मानव सामग्री संपूर्णतः पाषाण की है। इस पर चिपिंग और फ्लेकिंग की प्रणालियां ही दृष्टिगत होती हैं। उत्तर पाषाण काल में इन प्रणालियों के साथ साथ पॉलिशिंग प्रणाली का भी उपयोग किया गया। मनुष्य ने पाषाण सामग्री को रगड़ रगड़ कर चिकना और चमकदार बनाना प्रारंभ कर दिया। इससे उसमें अपूर्व सुंदरता आ गई व पहले की अपेक्षा अधिक सुडोल सुव्यवस्थित बहुसंख्यक बहुरूपी होने लगी। मनुष्य ने पाषाण के साथ साथ हड्डी और लकड़ी की सहायता से भी अपने औजार हथियार और अन्य वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ किया। उत्तर पाषाण काल की सामग्री एकमात्र समयोपयोगी अथवा आखेटोपयोगी ही नहीं थी, उससे जीवन के अन्य कार्य भी संपन्न होते थे। सातवां, अग्नि प्रयोग। उत्तर पाषाण काल में निश्चित रूप से अग्नि का प्रयोग होने लगा था। इस आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया। अग्नि की सहायता से वह अपना भोजन पकाने लगा। उत्खनन में अनेक पाक भांड उपलब्ध हुए हैं। अग्नि की सहायता से मनुष्य शीतकाल में उष्णता उत्पन्न करता और अंधकार में उसे जलाकर हिंसक पशुओं को भगाता था। सभ्यता की प्रगति। इन समस्त आविष्कारों और परिवर्तनों ने मानव सभ्यता की प्रगति को अपूर्व बल दिया। मानव जीवन उत्तरोत्तर विकसित और जटिल होने लगा। कृषि कर्म, पशुपालन, गृह निर्माण आदि में मनुष्य को अन्य मनुष्यों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती थी। अतः अब उसका जीवन एकाकी न रहा। पारस्परिक सहयोग सहकारिता के आधार पर वह अपने चतुर्दिक अन्य मनुष्यों के निकट आने लगा। यहीं से समाज का अंकुरण हुआ। सहकारिता उपयोगिता को समझकर मनुष्य अब एक दूसरे के समीप रहने लगे। इस प्रकार ग्राम का आविर्भाव हुआ। मनुष्य का जीवन सामूहिक हो गया। इस सामूहिक जीवन में कार्य विभाजन की संस्था का भी उदय हुआ होगा। अब प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक कार्य न करता था। जीवन के समस्त कार्यों को उसने आपस में विभक्त कर लिया था। उनके समाज में कोई कृषिकार था तो कोई पाषाणकार, कोई कुंभकार तो कोई अस्थिकार, कोई रंगरेचा कार्य करता था तो कोई जुलाहे का। इस प्रकार उत्तर पाषाण काल में व्यावसायिक विशेषीकरण का बीजारोपण हुआ। अन्य संचय और पशुपालन ने मनुष्य के मस्तिष्क में संपत्ति की भावना उत्पन्न की। संपत्ति के साथ धनाढ्यता और निर्धनता आई। इस आर्थिक समता ने दुखों और युद्ध ने संरक्षण योजनाओं, शस्त्रागार की स्थापना, दुर्गीकरण, सामूहिक संगठन आदि को जन्म दिया। संरक्षा कार्य विभाजन आर्थिक कारणों ने समाज को वर्गों और परिवारों में विभक्त कर दिया होगा। वर्ग के संचालन के हेतु नेता और परिवार के संचालन के हेतु क्या की महत्ता स्वीकृत हुई होगी। कृषि कर्म और आखेट बहुत कुछ ऋतुओं पर अवलंबित है। अतः उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यों ने ऋतुओं, जलवायु, आकाश मंडल आदि का अध्ययन किया होगा। इसी से जलवायु विज्ञान, खगोल शास्त्र और ज्योतिर्विद्या की निस्तृति हुई। अन्य साग और फल के उत्पादन निश्चय ने कृषि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और फल शास्त्र का अंकुरण किया। उत्तर पाषाण काल की उदीमाना जटिलता को देखते हुए यह अनुमान स्वाभाविक प्रतीत होता है कि तत्कालीन मनुष्य में धर्म, अंधविश्वास और अनुष्ठान की भावनाओं का भी बीजारोपण हो गया होगा। जीवन की आदि व्याधि और नश्वरता ने मनुष्य की कल्पनाओं को जागृत किया होगा और यदि उसने दानवी और दैवी शक्ति की कल्पना की हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। संभव है कि मृत्यु के पश्चात श्लोकोत्तर जीवन के विषय में भी उसकी कुछ धारणा रही हो। ये सबको रे अनुमान ही है, परंतु है नितांत स्वाभाविक। उत्खनन से इतना निश्चित हो गया है कि उत्तर पाषाण काल में मनुष्य शवों को दफनाता भी था और जलाता भी था। शवों के ऊपर निर्मित समाधियां अर्थात मकबरे भी उपलब्ध हुई है। कुछ शव भस्म पात्र भी मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शवों के साथ मनुष्य के हथियार औजार भी रख दिए जाते थे। ये सब किसी अनुष्ठान मूलक अंतिम क्रियाक्रम का आभास देते हैं। इस प्रकार उत्तर पाषाण काल में वर्तमान सभ्यता के अनेक अंग बीज रूप में विद्यमान थे। प्रमुखतया लेख, धातु और राज्य का आविर्भाव होना ही शेष था। तार्म तथा काश्य काल। पाषाण काल के पश्चात धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ। धातुओं में तांबा सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ। तांबा पाषाण की अपेक्षा कहीं अधिक उपयुक्त एवं सुविधाजनक था। यह पाषाण की अपेक्षा अधिक सुदृढ़, सुडोल, सुंदर और चिकना था। पाषाण के नितांत प्रतिकूल तांबा टूट जाने पर पुनः जोड़ा भी जा सकता था। पिघला कर सांचे के सहारे इसे छोटे बड़े किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता था। इसकी छोटी बड़ी चादरें बनाई जा सकती थीं और उनके खंड किए जा सकते थे। अपनी इन विशेषताओं के कारण तांबा शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। इस धातु का प्रयोग तत्कालीन मनुष्य के बौद्धिक विकास की सूचना देता है। तांबे की खानों को ढूंढने, उसे खोदकर निकालने और दूरस्थ प्रदेशों में भेजने, उच्च तामापी भट्टियों में उसे पिघलाने तथा सांचों की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देने के लिए वैज्ञानिक निपुणता की आवश्यकता थी। इसे धातुकालीन मनुष्य ने दीर्घकाल के परिश्रम और अनुभव के पश्चात ही प्राप्त किया होगा। कालांतर में मनुष्य ने अनुभव किया कि अति कठोर कर्मों के लिए तांबा अधिक उपयोगी नहीं है, उससे और अधिक कठोर एवं सुदृढ़ धातु की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस आवश्यकता की पूर्ति उसने एक नवीन धातु के आविष्कार से की। यह धातु कांसा थी, वह तांबे और टीन के सम्मिश्रण से उपलब्ध हुई थी। इसका आविष्कार ही तत्कालीन मनुष्य के रासायनिक ज्ञान का परिचायक है। परंतु यह महत्वपूर्ण बात है कि तांबे और कांसे की सामग्री विशेषतया उत्तर भारत में ही उपलब्ध हुई है, दक्षिण भारतवर्ष में यह सामग्री नगण्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि पाषाण काल के पश्चात चार्म युग और काशी युग का उदय उत्तर भारतवर्ष में ही हुआ। दक्षिण भारतवर्ष में पाषाण युग के पश्चात सीधे लौह युग का पदार्पण होता है। यह युग उत्तर भारतवर्ष में चार्म युग और काशी युग के पश्चात आता है। परंतु यह न समझना चाहिए कि धातु युग में पाषाण प्रयोग का पूर्ण विलोप हो गया। ऐसा न था, धातु के साथ साथ पाषाण भी प्रभुत्व मात्रा में प्रयुक्त होता रहा। परंपराओं का विलोप स्वर्ग नहीं होता। यही कारण है कि उत्खनन में अनेक स्थलों पर धातु सामग्री के साथ साथ पाषाण सामग्री भी उपलब्ध हुई है। उदाहरणार्थ ब्रह्मगिरी प्रदेश को लीजिए, यहाँ उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता ऐतिहासिक काल तक चलती रही। सर्वप्रथम ताम्र निर्मित सामग्री विशेषतया गंगा जमुना के दुआब से ही उपलब्ध हुई थी। कालांतर में सिंधु की घाटी की सभ्यता का पता लगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों पर जो खुदाई हुई है उसमें तांबे और कांसे की अनेक वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं। उनका उल्लेख आगे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किया जाएगा। यहाँ हमारा तात्पर्य उन तांबे अथवा कांसे की वस्तुओं से है जो सिंधु सभ्यता के पश्चात निर्मित हुई थी। इस प्रकार की सामग्री का सबसे विशाल भांड गंगेरिया में उपलब्ध हुआ है। इस सामग्री में कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, कटारे, हारपून और रिंग प्रमुख हैं। इनमें कुल्हाड़ियाँ आदि प्राचीन धातु निर्मित कुल्हाड़ियों के ही विभिन्न रूप हैं। पिकट महोदय ने विभिन्न आकार प्रकारों के आधार पर इन्हें 5 कोटियों में विभक्त किया है। समस्त तलवारें प्रायः एक सम हैं। इनके ब्लेड पत्ती के समान हैं। संपूर्ण ब्लेड और मुठिया एक ही साचे में ढाली हुई प्रतीत होती है। अभी तक कटार का एक ही उदाहरण मिला है और वह भी अज्ञात स्थान से। तलवार की भांति कटार के ब्लेड और मुठिया भी एक ही साचे में ढले हैं। हारपून 3 कोटियों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला, इसमें हारपून केवल खुरदुरे हैं और उनके ब्लेड के दोनों ओर कांटे हैं। सबसे नीचे के कांटे जोड़े के नीचे एक या अनेक छेद पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें कांटे ब्लेड के नीचे हैं। तीसरा, इस कोटि अंतर्गत हारपून के ब्लेड पत्ती के समान है। इनमें कांटे प्रथम दोनों कोटियों की अपेक्षा बड़े और वक्र हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रिंग हथियार औजार भी हैं। यह समस्त सामग्री सिंधु घाटी में उपलब्ध सामग्री से भिन्न है। सिंधु क्षेत्र में तलवार और हारपून का अभाव है। वहाँ के हथियार औजार भी अति साधारण हैं। उनमें से कुछ पाषाणकालीन हथियारों और औजारों से मिलते जुलते हैं। यही नहीं, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत धातु सामग्री के साथ साथ पाषाण सामग्री भी प्रयुक्त होती रही। इन सब कारणों से प्रकट होता है कि सिंधु सभ्यता काल की दृष्टि से पाषाण काल के निकट थी और उपयुक्त अधिक विकसित धातु सामग्री सिंधु सभ्यता के पश्चात निर्मित हुई होगी। परंतु अब प्रश्न यह होता है कि गंगा जमुना के दुआब में उपलब्ध होने वाली यह तांबे और कांसे की सामग्री आई कहां से? हिनगेल्डन नामक विद्वान का मत है कि यह सामग्री भारत में आर्यों के साथ आई। इस प्रकार धातु सामग्री ईरान, काकेशन प्रदेश और डेन्यूब घाटी में भी 1200 ईसा पूर्व के लगभग विद्यमान थी। आर्यों ने उसी दिशा से होकर प्रस्थान किया होगा, परंतु निश्चित साक्ष्यों के अभाव में यह मत संदिग्ध ही है। मेगालिथिक काल। जिस प्रकार पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बीच एक संक्रांति काल था, उसी प्रकार ताम्रकांस्य काल और लौह काल के बीच में भी। यह द्वितीय संक्रांति काल मेगालिथिक काल के नाम से प्रख्यात है। यूनानी भाषा में मेगास और लिथोस क्रमशः विशाल और पाषाण के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार मेगालिथ विशाल पाषाण का बोधक हुआ। परंतु पूर्व ऐतिहासिक में इस शब्द का विशेष अर्थ है। दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी हुई कुछ समाधियां इत्यादि प्राप्त हुई हैं, वही मेगालिथ के नाम से संबोधित होती हैं। जिस काल में उनका निर्माण हुआ उसे मेगालिथिक काल की संज्ञा दी गई। इस काल में पाषाण, ताम्र एवं कांस्य की सामग्री के साथ साथ लौह सामग्री भी निर्मित होती थी। इससे प्रतीत होता है कि यह संक्रांति काल था जिसमें न तो पूर्व परंपराओं का पूर्णतः परित्याग हुआ था और न नवीन का पूर्णतः ग्रहण। एक उल्लेखनीय बात और है, वह यह कि मेगालिथिक काल के पश्चात मेगालिथिक का निर्माण होता रहा। परंपराओं की महाप्राणता का यह पुनः प्रमाण है। यद्यपि मेगालिथ का निर्माण विशेषतया दक्षिण भारत में ही हुआ था, तथापि उदाहरण मध्य प्रदेश, मध्य भारत, उड़ीसा, आसाम, बिहार, राजपूताना, गुजरात और कश्मीर आदि प्रदेशों में भी उपलब्ध होते हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर विदित होता है कि स्वयं दक्षिण भारत में भी मेगालिथिक संस्कृति एक समय और एक प्रकार की नहीं थी। मेगालिथ के भीतर मिली हुई सामग्री कभी पाषाण की है तो कभी तांबे की, कभी कांसे की तो कभी लोहे की, तो कहीं पतली दीवार के मित्रपात्र मिले हैं तो कहीं मोटी दीवार के। प्रमुखतया मेगालिथ का प्रयोग समाधि के रूप में नहीं किया जाता था। अतः अभी तक भारत में मेगालिथ के निम्न प्रकार विशेष रूप से उपलब्ध हुए हैं। पहला, शिष्ट समाधि। इसमें पहले पृथ्वी में एक आयताकार खाई खोदी जाती थी। इसके पश्चात उस खाई की फर्श पर एक पाषाण खंड से पाट दी जाती थी। खाई के भीतर चारों दीवारों पर भी चार पाषाण खंड लगा दिए जाते थे। न पाषाण खंडों को ऑर्थोस्टल कहते हैं। अंत में एक अन्य पाषाण खंड के सहारे छत को पाट करके शिष्ट समाधि को एक बंद संदूक की आकृति दे दी जाती थी। पुनः उसे पाषाण निर्मित दीवार के द्वारा घेर दिया जाता था। बंद संदूक की पूर्वी दीवार में एक वृत्ताकार छेद कर दिया जाता था। ये अंग्रेजी में पॉट होल कहते हैं। इस गोल छेद का व्यास एक सही 1/2 फीट से लेकर 2 फीट तक होता था। छेद के बाहर 2 पाषाण खंड कर एक मार्ग बना दिया जाता था। इस प्रकार के निर्मित संदूक का प्रयोग समाधि के रूप में दिया जाता था। पहले इसकी सतह पर हथियार, औजार, मृत भांड, आभूषण आदि रखे जाते थे और फिर इस समस्त सामग्री के ऊपर मृतक के अस्थि, पंजर के अवशिष्ट अंश रखे जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि शवों को अस्थि मात्र करने के लिए पहले कहीं अन्यत्र डाल दिया जाता था। जब वे मांसहीन होकर सूख जाते थे तो उन्हें उपयुक्त शिष्ट में समाधिस्थ करते थे। एक शिष्ट में अनेक शवों के अस्थि पंजरों के अवशेष रखने की प्रथा थी। ये अवशेष वृत्ताकार छेद की सहायता से ही भीतर डाले जाते थे। इसके पश्चात वह एक पाषाण खंड के द्वारा बंद कर दिया जाता था। इस प्रकार की शिष्ट समाधियां 7 फीट तक लंबी, 5 फीट तक चौड़ी और 6 फीट तक गहरी हैं। अनेक स्थलों पर छोटी छोटी समाधियां भी मिली हैं। पुंडुक कोट्टाय प्रदेश में शिष्ट समाधि का एक दूसरा रूप उपलब्ध हुआ है। इसमें संदूक के बीच में एक पाषाण खंड खड़ा कर दिया जाता था, जिससे वह संदूक 2 भागों में विभक्त हो जाता था। इसके पश्चात एक भाग को पुनः एक अन्य पाषाण खंड के द्वारा 2 मंजिलों में विभक्त कर दिया जाता था। दोनों मंजिलों को संबंधित करने के लिए संदूक के बीच के पाषाण खंड के मध्य में एक छेद कर दिया जाता था। अविभक्त भाग के पूर्वी और एक छोटा सा प्रदेश कच्छ होता था। इन दोनों को संबंधित करने के लिए भी बीच की दीवार में एक छेद होती थी। समस्त शिष्ट एक पाषाण निर्मित वित्त से घिरा रहता था। शिष्ट समाधियों के उदाहरण ब्रह्मगिरी के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, पीठ सर्कल। पहले ग्रेनाइट पाषाण खंडों की सहायता से 20 या 30 व्यास का एक वृत्त बनाया जाता था। फिर इसके मध्य में एक खाई खोदी जाती थी। यह खाई भी वृत्ताकार होती थी और इसका व्यास 8 से 12 फीट होता था। इसकी गहराई 6 से 8 फीट होती थी। खाई की फर्श पर 4 पाषाण पाद रख दिए जाते थे। कदाचित इनके ऊपर लकड़ी की अर्थी रखी जाती थी। कालांतर में जब अर्थी में रखे हुए शव का मांस गल जाता था और वह अस्थि पंजर पात्र रह जाता था तो उसकी अस्थियां एकत्र करके उपयुक्त शिष्ट समाधि में दफनाने के लिए पहुंचा दी जाती थी। जो अवशेष रह जाते थे वे पीठ सर्कल में दफना दिए जाते थे। प्राप्त हुए इन अवशेषों के नीचे लौह सामग्री, आभूषण, शंख, मूंगे और मित्र पात्र इत्यादि उपलब्ध हुए हैं। शिष्ट समाधि की भांति पीठ सर्कल की भी पूर्वी दीवार में प्रवेश द्वार होता था। अवशेषों के समाधिस्थ हो जाने के पश्चात यह प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता था। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि पीठ सर्कल विशेषतया शवों के मांस को गलाने और खाने के काम में ही आता था, परंतु यह निष्कर्ष असंदिग्ध नहीं है। यह पीठ सर्कल ब्रह्मगिरी के उत्खनन में उपलब्ध हुए हैं। तीसरा, कैर्न सर्कल। यह रूबल पाषाण खंडों की सहायता से बनी हुई समाधि होती है। इसके भीतर शव भस्म पात्र अथवा शव अस्थि पात्र दफनाए जाते थे। समाधि के चतुर्दिक बड़े बड़े बोल्डर पाषाण खंडों की सहायता से एक वृत्त खड़ा कर दिया जाता था। इस प्रकार की समाधियां मद्रास के चिंगलपुट जिले में मिली हैं। चौथा, डोलमेन। यह प्रायः शिष्ट के ही समान होता है, परंतु इसमें संदूक खाई में न होकर पृथ्वी के ऊपर होता है। इसके उदाहरण भी चिंगलपुट में प्राप्त हुए हैं। पांचवा, अम्ब्रेला स्टोन। पहले वर्गाकार पृथ्वी खंड के चारों कोनों पर चार पाषाण पात्र खड़े किए जाते थे। इनके ऊपर एक कम ऊंचे और अधिक चौड़े कोन के आकार का एक पाषाण खंड रख दिया जाता था। यह छाते के समान लगता था। इसे से संपूर्ण मैगलीथ को अम्ब्रेला स्टोन के नाम से पुकारते हैं। छठवां हुड स्टोन। इसमें पाषाण खंड नहीं होते। छत्राकार मैगलीथ पृथ्वी पर ही आधारित रहता है। सातवां कंदराएं। पहले पृथ्वी में एक आयताकार खाई खोद ली जाती थी, फिर उसकी किसी एक दीवार के भीतर कंदरा निर्मित की जाती थी। कभी कभी इन कंदराओं के भीतर ब्रेंच रख दी जाती थी। कभी कभी उनके फर्श पर स्तंभ खड़ा कर दिया जाता था। आठवां मेहीर। ये एक आकस्मिक स्तंभ के समान होते थे। उपयुक्त 5, 6, 7 और 8 संख्याओं के मैगलीथ कोचीन राज्य में उपलब्ध हुए हैं। ये समाधियां हैं अथवा पूजा स्तंभ। इस विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मद्रास के तिरुनेलवेली जिले के आदि चन्नलूर नामक स्थान में कुछ पात्र उपलब्ध हुए हैं, जिनके भीतर शव के अवशेषों को रखकर गड्ढों में गाड़ दिया जाता था। अवशेषों के साथ उनके भीतर हथियार, औजार, आभूषण, मित्र पात्र इत्यादि भी रख दिए जाते थे। इस प्रकार के अवशेष पात्रों का उल्लेख तामिर साहित्य में भी हुआ है। ये पात्र मेगालिथिक संस्कृति से संबद्ध है। मैगलीथ निर्माण के काल का विषय विवादग्रस्त है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक मैगलीथ ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी से लेकर ईसा की पहली शताब्दी तक निर्मित हुए। ब्रह्मगिरी के उत्खनन में उपलब्ध मैगलीथ यही सिद्ध करते हैं। कोयम्बटूर जिले के सूलर नामक स्थान में एक मैगालिथिक सिस्ट में अन्य सामग्री के साथ ईसा पूर्व की 3री अथवा 2री शताब्दी की एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। मैगालिथिक सामग्री के साथ ईसाई संवत के पूर्व ही आहत मुद्राएं मिली हैं। 1947 के कैसल महोदय ने पांडिचेरी के अरिकमेडू नामक स्थान की प्रथम शताब्दी की सतह से मैगालिथिक मृत पात्र प्राप्त किए। कोचीन में एक मैगालिथिक सिस्ट में कुछ अन्य मित्र पात्र निकले हैं, जो कला के दृश्य से आंध्रकाल के सन्निकट प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के समस्त सामग्री भी ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर ईसा के प्रथम शताब्दी के बीच की है। अतः जब तक इसके विरुद्ध अन्य साक्ष्य उपस्थित न हो, तब तक हम इन मैगालिथिक को अधिक प्राचीन नहीं मान सकते। पूर्व ऐतिहासिक काल की कंदरा चित्रकला। मध्य भारत और उत्तर प्रदेश की कतिपय कंदराओं में अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। अनेक विद्वान इन चित्रों को पूर्वैतिहासिक मानते हैं, परंतु यह मत न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। यहाँ इस विषय पर विचार कर लेना नितांत समीचीन है। उपयुक्त कंदरा चित्रकला के चार केंद्र उपलब्ध हुए हैं। पहला महादेव पहाड़ियों में होशंगाबाद और पंचमढ़ी, दूसरा रायगढ़ में सिंघनपुर और कबरा पहाड़, तीसरा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में सोन घाटी, चौथा उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में मानिकपुर एवं समीपस्थ प्रदेश। इन समस्त स्थानों की पहाड़ियाँ मुलायम बलुआ पत्थर की बनी हैं। अतः वर्षा और वायु के सामूहिक प्रभाव से वे अनेक स्थानों पर कट गई हैं और उनके बीच में कंदराएं बन गई हैं। प्राचीन मनुष्य ने इन्हीं कंदराओं को अपना आवास बनाया था। इनमें उसके मृत पात्र कोयले और भस्मादि उपलब्ध हुए हैं। इन्हीं की दीवार पर उनके द्वारा अंकित किए गए चित्र हैं। पहला महादेव पहाड़ियाँ। पशु चित्रों की यहाँ प्रचुरता है। कहीं वन्य पशु अंकित किए गए हैं तो कहीं पालित पशु, कहीं उनका आखेट हो रहा है तो कहीं वे गड़ेरिये के साथ चारागाह जा रहे हैं। अन्य स्थल पर वे अपने स्वामी के घर में बंधे हैं। समस्त पशुओं में हाथी, सिंह, तेंदुआ, चीता, सुअर, हिरण, घोड़ा, बैल, कुत्ता, बकरी आदि प्रमुख हैं। कहीं कहीं दो वर्गों में युद्ध का प्रदर्शन मिलता है। इसमें धनुषधारी, करवालधारी और अश्वारोही भी हैं। एक स्थल पर हास्यपूर्ण प्रदर्शन में एक बंदर चित्रित किया गया है, जो अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर बांसुरी बजा रहा है। उसी के समीप एक अति छोटी चरपाई पर एक मनुष्य चित लेटा हुआ अपने उठे हुए करतलों से ताल दे रहा है। एक अन्य चित्र में कुछ मनुष्य मधुमक्खियों के एक छत्ते से मधु संग्रह कर रहे हैं। एक स्थान पर कदाचित स्वस्तिक पूजा का चित्र है। एक स्वस्तिक में एक स्वस्तिक के चतुर्दिक कुछ मनुष्य है, प्रत्येक के हाथ में एक छाता है। स्वस्तिक के नीचे की 3 गांवों के चित्र है। एक गौ के साथ उसका बछड़ा भी है। गौ के नीचे टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची हुई है। कदाचित यह एक सरिता है। सरिता के उस पार कदाचित कुछ बकरियों के चित्र हैं। दूसरा रायगढ़ सिंघनपुर का सर्वप्रमुख चित्र एक आखेट का है। इसमें कुछ मनुष्य लाठियों और डंडों से एक विशालकाय पशु के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। इस पशु के नीचे कुछ बाएं और एक अन्य पशु हैं। उसके ऊपर भी आक्रमण हुए हैं। भागते हुए इस पशु ने अपने एक आक्रमणकारी को ऊपर फेंक दिया है। इस पशु के नीचे कुछ बाएं और 6 मनुष्यों के और दाहिनी ओर 3 मनुष्यों के अन्य चित्र हैं। यह समस्त चित्र लाल रंग से अंकित हैं। सिंघनपुर के समान कबरा पहाड़ पर भी पशुओं और मनुष्यों के चित्र हैं। ये भी लाल रंग में अंकित हैं। तीसरा मिर्जापुर। मिर्जापुर की कंदरा चित्रकला से तिथि निर्धारण में सहायता मिली है, जहां एक कंदरा में लगभग 2 दर्जन अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, जिनमें ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक की तिथियां हैं। अतः स्पष्ट है कि यह चित्रकला पूर्वैतिहासिक की नहीं है। मिर्जापुर की कंदरा चित्रकला विविध विषयक है। कुछ स्थानों पर नाचते हुए मनुष्यों के चित्र है, कहीं जाल की सहायता से पक्षियों के पकड़ने का चित्र है, तो कहीं पर अश्वारोहियों की सहायता से हाथी पकड़ने का। एक चित्र में आहत सुअर की वेदना प्रदर्शित की गई है। अन्यत्र एक योद्धा और एक सिंह के रिलीफ चित्र हैं। चौथा बांदा। इस प्रदेश के चित्रकला के विषय और प्रणाली को देखने से प्रतीत होता है कि यह भी 4थी अथवा 5वीं शताब्दी के पूर्व की नहीं है। इसके चित्रण विविध एवं पशु प्रधान है। एक चित्र में एक गाड़ी के ऊपर कोई धनी मानी व्यक्ति जा रहा है, उसके साथ एक छत्रवाहक है, साथ में 2 अंगरक्षक भी प्रदर्शित किए गए हैं। एक के हाथ में धनुष बाण है और दूसरे के हाथ में लाठी अथवा डंडा। एक अन्य चित्र में 3 घोड़े और उनके 3 वाहक अंकित किए गए हैं। एक स्थान पर एक आखेट का चित्र है। इसमें कुछ अश्वारोही और धनुर्धारी पशुओं का पीछा कर रहे हैं। गार्डन ने समस्त चित्रों का निरीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि वे 6वीं अथवा 10वीं शताब्दियों के बीच में निर्मित हुए थे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चित्र निश्चित रूप से 6वीं शताब्दी के पूर्व के हैं, क्योंकि जिन कंदराओं में वे चित्र हैं उनमें धातु सामग्री का अभाव है। पुनः अनेक कंदराओं में माइकोलिथ सामग्री उपलब्ध होती है। अतः संभव है कि कुछ कंदराओं के कुछ चित्र 500 ईस्वी पूर्व के लगभग के हैं। लोह काल अंत में मनुष्य ने सर्वप्रधान धातु लोहे को ढूंढ निकाला। विद्वानों का मत है कि सर्वप्रथम इट्टाइट जाति को ही 1380 पूर्व के लगभग इस धातु का ज्ञान हुआ था। वहीं से यह धातु ज्ञान एशियाई और भूमध्य सागरी देशों को उपलब्ध हुआ है, परंतु बहुत संभव है कि अन्य देशों को यह ज्ञान स्वतंत्र रूप से हुआ हो। लोहे की प्राप्ति ने मानव सभ्यता की प्रगति को अति सत्वर कर दिया। आज का युग प्रमुखतया लौह युग है। लोहे के अभाव में हमारी सभ्यता की रूपरेखा क्या हो सकती थी, इसका अनुमान हम सहज रूप में ही कर सकते हैं।